नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड दीर्घकालिक साझेदार बने रहने और आपसी विकास के लिए हिंद प्रशांत देशों के साथ सहयोग के लिए तैयार। भारत वर्ष 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा के अंतर्गत स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमरीका ने भारत से चुराई लगभग 300 कलाकृतियां वापस की। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में एनसीपी नेता अरुणा कुमार दिसानायके अन्य प्रत्याशियों से आगे। आज विश्व गेंडा दिवस है। और चेन्नई में भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रन की करारी शिकस्त दी। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड समूह दीर्घकालिक साझेदार बने रहने और आपसी विकास के लिए हिंद प्रशांत देशों के साथ सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है और यह जरूरी है कि क्वाड देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानवता के लिए एकजुट होकर कार्य करें।
हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अगले वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। घंटे भर चली बैठक में दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए नई संभावनाओं की तलाश की। श्री बाइडेन ने कहा कि भारत अमरीका साझेदारी इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में है। श्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्वाड शिखर सम्मेलन के अवसर पर भेंट की। मई 2022 के बाद से दोनों नेताओं की यह नौवीं मुलाकात है। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, रक्षा, व्यापार, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे व्यापक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच सामरिक और वैश्विक भागीदारी में हुई प्रगति के लिए श्री किशिदा को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किशिदा को आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। पिछले महीने श्री किशिदा ने पार्टी का पद छोड़ने और दोबारा चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय बैठकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस सम्मेलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक विकास, शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। श्री मिश्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करने और क्वाड को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में क्वाड सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
Prime Minister mentioned that at a time when the world is ridden with tensions and conflicts, the coming together of these 4 Quad partners with shared democratic values is important for humanity. He said the Quad was here to stay, to assist, to partner and to complement the efforts of the Indo-Pacific countries. The leaders took stock of the progress that had been achieved by the Quad over the last 1 year and set forth an ambitious agenda for the next year, and India will be hosting the Quad summit in 2025.
भारत ने अमेरिका के डेलावेयर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर केंद्रित अपनी तरह के पहले समझौतों के साथ व्यापक हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा आईपीईएफ पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में समृद्धि संबंधी हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा के अंतर्गत इन समझौतों का आदान प्रदान किया गया। स्वच्छ अर्थव्यवस्था संबंधी समझौते का लक्ष्य तकनीकी सहयोग, कार्यबल विकास, क्षमता निर्माण और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देना है। समझौते में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता पर विशेष बल देने के साथ साथ निवेश और रियायती वित्त पोषण सहित परियोजना वित्त पोषण की व्यवस्था का प्रावधान है। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था संबंधी समझौते का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक पारदर्शी और अनुमानित व्यापार तथा निवेश वातावरण तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका ने भारत से चुराई गई 297 कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया है। ये कलाकृतियां जल्द ही भारत भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इन कलाकृतियों को लौटाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि ये वस्तुएं केवल भारत की ऐतिहासिक संस्कृति का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उसकी सभ्यता का आधार है। घनिष्ठ द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से और जून 2023 में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसार अमरीकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जुलाई 2024 में एक सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अधिकांश कलाकृतियां पूर्वी भारत की टेराकोटा से बनी हैं, जबकि शेष कलाकृतियां पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी हैं और उनका संबंध देश के विभिन्न भागों से है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। एनपीपी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने शुरुआती बढ़त बना ली है। चुनाव आयोग के अनुसार वामपंथी नेता ने 22 चुनावी जिलों में 50 से अधिक मत हासिल किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
श्रीलंका के सभी चुनावी जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है। आज सुबह जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, एनपीपी नेता अनुरा कुमारादिसनायका ने अन्य उम्मीदवारों पर बढ़त बना ली थी, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी अंतर कम होता गया। चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए रुझानों और परिणामों के अनुसार वामपंथी नेता 39% वोटों के साथ आगे हैं, जबकि साजिद प्रेमदासा 34% वोट बटोर पाए और मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा 17% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना का दूसरा दौर होगा, जिसमें शीर्ष दो उम्मीदवार को छोड़कर सभी उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और अन्य उम्मीदवारों के दूसरे और तीसरे वरीयता के वोट शीर्ष दो उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इस दौर के बाद जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट हासिल करेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
भारतीय संसद कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहे दो दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। सम्मेलन से पहले सीपीए भारत क्षेत्र कार्यकारी समिति की बैठक होगी। सम्मेलन का विषय सतत और समावेशी विकास में विधायी समितियों की भूमिका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुणे में एक निजी कंपनी में केरल की चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए व्यवसायों से वैश्विक मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्य संस्कृति और विनियमों की समीक्षा करने का आग्रह किया। आयोग ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को 4 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक आतंकवादी की घुसपैठ नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। आतंकियों ने आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राव वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। हरियाणा में अगले महीने की 5 तारीख को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। हम आपके लिए लाए हैं सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रोफाइल। 2008 से पहले दरबा निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में था और इसके परिसीमन के बाद कई गांवों को एलनाबाद विधानसभा में शामिल किया गया था।
एलनाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा विधानसभा के 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से 46वां निर्वाचन क्षेत्र है। यह निर्वाचन क्षेत्र एक सामान्य सीट है और सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला 2010 से एलनाबाद से हरियाणा विधानसभा के निर्वर्तमान सदस्य हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रण वाला यह निर्वाचन क्षेत्र कृषि विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में 1,95,547 मतदाता हैं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 192 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार करीब 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के अमित चंद तलवाड़ा, कांग्रेस पार्टी से भरत सिंह बेनीवाल, इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला, आम आदमी पार्टी से मनीष अरोड़ा, जननायक जनता पार्टी से अंजनी लाड़ा प्रमुख उम्मीदवार हैं। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व गैंडा दिवस है। गैंडों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैंडों की सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पिछले कई वर्षों से गैंडों के संरक्षण के प्रयासों में शामिल कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गर्व की बात है कि भारत में बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। उन्होंने असम में काजीरंगा की अपनी यात्रा का स्मरण किया और सभी से वहां जाने का आग्रह भी किया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यानम में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मध्य, पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चार दिनों तक विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। अगले सात दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं असम और मेघालय में कल से शुक्रवार तक और बिहार में बुधवार तक मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मराठवाड़ा और मंगलवार से शुक्रवार तक मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मंगलवार तक और तेलंगाना में अगले तीन दिनों तक छिटपुट तेज बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की है। समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
बिहार में सुल्तानगंज और रतनपुर स्टेशनों के बीच पटरी पर पानी भर जाने के कारण जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। गंगा नदी का जलस्तर सुल्तानगंज और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच रेल पुल के गार्डर तक पहुंच गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना और वैशाली के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। और अब खेल जगत की खबरें खेल संवाददाता मुकेश कुमार से।
हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में आज भारत की पुरुष और महिला टीम स्वर्ण पदक के लिए अपने अपने मुकाबले खेलेगी। पुरुष वर्ग में भारत का मुकाबला स्लोवेनिया से और महिला टीम का मुकाबला अजरबैजान से होगा। पुरुष वर्ग में भारत के 19 अंक हैं, वहीं महिला टीम के 17 अंक हैं। पुरुष टीम ड्रॉ के साथ भी स्वर्ण पदक जीतने में सफल हो सकती है, वहीं महिला वर्ग में टीम को जीत की आवश्यकता होगी। प्रतियोगिता में कल भारत ने पुरुष वर्ग में दूसरे स्थान पर मौजूद अमरीका को हराया था, वहीं महिला टीम ने भी चीन को हराकर टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर वापसी की थी। अंतिम राउंड की बाजी अब से कुछ देर में शुरू होगी। इस बीच चेन्नई में भारत ने बांग्लादेश से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 280 रन से जीत लिया है। खेल के चौथे दिन बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 357 रन की आवश्यकता थी, लेकिन पूरी टीम केवल 234 रन पर ही सिमट गई। भारत को मैच जीतने के लिए आज केवल 6 विकेट की जरूरत थी। मैच के तीसरे दिन कल शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतकों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया था। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 6, रविन्द्र जडेजा ने 3 और प्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जाएगा।
चार दिन का वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 19 सितंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। लगभग 90 देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 18 केंद्रीय मंत्रालय और सहयोगी सरकारी निकाय इसमें भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने को रेखांकित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड दीर्घकालिक साझेदार बने रहने और आपसी विकास के लिए हिंद प्रशांत देशों के साथ सहयोग के लिए तैयार। भारत वर्ष 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा के अंतर्गत स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमरीका ने भारत से चुराई गई लगभग 300 कलाकृतियां वापस की। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में एनपीपी नेता अरुणा कुमार दिसानायक के अन्य प्रत्याशियों से आगे। आज विश्व गैंडा दिवस है और चेन्नई में भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रन की करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।